आरव अयान के साथ छवि के रूम में था। छवि नींद से जाग गई थी और अब वो अपने पूरे होश में थी। अपनी बीमारी के चलते छवि को अक्सर भ्रम होने लगते थे और वो एक अलग ही दुनिया में जीने लगती थी। फिलहाल उसकी हालत सही थी तो अयान ने छवि को उसकी बीमारी के बारे में बताने का सोचा। उसके साथ आरव भी था। छवि अपने पूरे होश में थी तो वो आरव के साथ काफी रूखे तरीके से बर्ताव कर रही थी। ये देखकर आरव रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन फिर छवि ने उसे खुद बाहर जाने से रोका और अंदर बुला लिया। रूम में वापस आते ही आरव ने छवि की तरफ देखे बिना किसी भाव के कहा, अच्छा लगा आपको फिर से पहले की तरह देखकर। आपको तो याद भी नहीं होगा, आप पिछले 2-3 दिनों में कुछ ज्यादा ही फेक बिहेव कर रही थीं। मुझे सब याद है और मेरा बिहेवियर फेक नहीं था। कभी मौत के करीब जाकर देखना या महसूस करना कि तुम अपने किसी चाहने वाले को खोने वाले हो, तब पता चलेगा कि वो इंसान हमारे लिए कितना कीमती था, छवि ने रूखे तरीके से जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर आरव को गुस्सा आने लगा। वो उसके पास आया और कड़वाहट से बोला, अच्छा तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ मिसेस सिंघानिया? कभी मैंने तो ये बात महसूस नहीं की, ना अब और ना तब जब आप मेरे साथ रहती थीं। जब मैं 6 साल का था तब आप मुझे और मेरे डैड को छोड़कर अपने लवर के पास चली गईं। उस वक्त आपके लिए सिर्फ वो ज़रूरी था। अयान को भी आप अपनी मजबूरी में साथ लेकर गई थीं क्योंकि वो छोटा था। तुम मेरी फीलिंग्स कभी मत समझना, मैं तुम्हें समझाने के मूड में भी नहीं हूँ आरव। तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा आने लगा और फिर मैं वो सब करने लगी, वरना मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। कभी पूछना अपनी दादी से कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। तुम्हारे डैड तो बच्चा चाहते भी नहीं थे, फिर भी मैंने उनसे लड़ झगड़ कर अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की। उन्हें अपने बिजनेस के चलते कभी टाइम ही नहीं मिला। अकेले मैंने तुम्हें पाला, वो भी पूरे प्यार से। हाँ, पूरे प्यार से पालने के बाद आप एक दिन मुझे छोड़कर चली गईं, आरव ने सख्त लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, तुम्हें भी अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन तुम्हें अपने डैड के साथ रहना था। कभी सोचा है उस वक्त मुझे कितना बुरा लगा होगा जब एक 6 साल का बच्चा अपनी मॉम को छोड़कर डैड को सिलेक्ट कर रहा है? छवि ने नम आंखों से जवाब दिया। आरव और छवि की बातें अब बहस में बदलती जा रही थीं और दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। उन्हें देखकर अयान ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने सोचा था कि वो सब कुछ काफ़ी नॉर्मली छवि को बताएगा और आरव उसका साथ देगा। उन्हें शांत करने के लिए अयान ने बीच में बोलते हुए कहा, प्लीज़ आप दोनों चुप हो जाइए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। नो, यू जस्ट शट अप, छवि और आरव अयान की तरफ देखकर एक साथ बोले। फिर छवि ने आरव की तरफ देखकर कहा, हाँ तो सुनो अब मेरी बात। तुमने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम्हारे डैड ने कोर्ट से रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर ले लिया था जिसकी वजह से मैं तुम्हें मिल नहीं पाती थी। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और तुमसे मिलवाने के बदले ज़बरदस्ती मेरे साथ रिलेशन बनाया। कभी सोचा है कि मैं कितने दर्द में रही होगी कि अपने बेटे से मिलने के लिए मुझे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है? रियली छवि सिंघानिया, आपने तो मेरे डैड को एक मिनट में विलन बना दिया। आप ही को लग्जरियस लाइफ देने के लिए मेरे डैड दिन रात मेहनत करते थे और आपने उन्हें छोड़कर एक अंडरवर्ल्ड डॉन से रिश्ता बना लिया। मेरे डैड को सब पता चला तो उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कोई आम इंसान करता है। चलिए पुरानी बातों को जाने देते हैं, उस बात की क्या सफाई देंगी आप जब आपने मुझ पर हमला करवाया था? जान से माल देना चाहती थी ना आप मुझे? मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी मिसेस खुराना को ब्लैकमेल किया, उसका फ़ायदा उठाया, उसका कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? आरव गुस्से में चिल्लाकर बोला। छवि ने आरव की तरफ देखकर गुस्से में सिर हिलाया और कहा, मुझे ये सब करने के लिए तुमने ही मजबूर किया था। तुम मेरी कंपनी को गिराने पर आ गए थे। अंडरवर्ल्ड में मैंने थोड़ी बहुत पहचान बनाई थी, वो सब तुम्हारी वजह से डाउन होने लगी थी। मुझे गुस्सा आ गया और फिर मुझे तुम्हें अपने रास्ते से हटाना था। ये सही है आपका, कभी आपकी लाइफ में मेरे डैड विलन होते हैं तो कभी मैं। आप एकदम सीधी साधी अच्छी इंसान हैं, इंसान नहीं आप तो भगवान हैं, जो आप कुछ भी कर सकती हैं। अगर सामने वाला आपको कुछ करने से रोके तो वो विलन बन जाता है। यू नो व्हाट, आई हेट यू छवि सिंघानिया, आरव ने जवाब दिया। वो गुस्से में वहां से जाने लगा। अयान दौड़कर उसके पीछे गया और उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ भाई, हम यहाँ मॉम को उनकी बीमारी के बारे में बताने के लिए आए थे, ना कि उनके थोड़ा सा नॉर्मल होते ही आप दोनों का झगड़ा देखने। वापस अंदर चलिए। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और छवि की तरफ पलटा। उसने हाथ बांधते हुए कहा, आपको फर्स्ट स्टेज लंग कैंसर है और ब्रेन में क्लॉटिंग शुरू हो गई है। सर्जरी के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो पाएंगी। आरव ने एक झटके में छवि को सब कुछ बता दिया था। आरव उस वक्त काफी रूड साउंड कर रहा था। छवि और अयान उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अयान ने सोचा था कि वो पहले छवि को अच्छे से सब समझाएगा और प्यार से सब बताने वाला था, लेकिन आरव ने गुस्से में कुछ नहीं सोचा और छवि के सामने उसकी सारी बीमारियों की लिस्ट खोल कर रख दी। इतना सब कुछ सुनाने के बाद छवि की आंखें नम होने लगी। उसने अयान की तरफ देखा तो उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। फिर छवि ने आरव की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। छवि की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने धीरे से आरव से पूछा, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरने वाली हूँ? मुझे नहीं पड़ता, आरव ने बेरुखी से जवाब दिया।
आरव का जवाब सुनकर एक पल के लिए वहां बिल्कुल चुप्पी छा गई। फिर उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और छवि की तरफ देखकर धीरे से कहा, मेरे फर्क पड़ने या ना पड़ने से क्या हो जाएगा मिसेस सिंघानिया? क्या हमारा रिश्ता बदल जाएगा? क्या आप मुझे मेरी जिंदगी के वो 21 साल लौटा सकती हैं जो मैंने आपके बिना तड़पते हुए बिताए थे? आरव की बातों का छवि के पास कोई जवाब नहीं था। वो नजर झुकाए चुपचाप बैठी थी। तभी आरव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लौटा पाएंगी, ना मेरे पहले के इमोशंस और ना ही बाकी सब जो मैंने इतने सालों में मिस किया। आप मेरे लिए कभी थी ही नहीं मॉम। सच कहूं तो मुझे आपके जाने से नहीं फर्क पड़ेगा, बोलते हुए आरव की आवाज भारी होने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और आज इतने सालों बाद उसने छवि को मॉम कहकर बुलाया था। आरव छवि के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो रूम से बाहर चला गया। वहीं छवि की आंखों में भी आंसू थे। उसने अयान की तरफ देखकर सुबकते हुए कहा, तुमने सुना, उसने मुझे मॉम बुलाया। अयान ने हां में सिर हिला दिया। इस वक्त उसके दिल में छवि की बीमारी से ज्यादा टेंशन आरव के दिल का दर्द देखकर हो रहा था। भले ही आरव ने कभी जाहिर ना किया हो, लेकिन छवि ने उसके साथ जो भी किया था वो उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ देता था। आरव और अयान छवि को उसकी बीमारी का सच बताने आए थे, लेकिन आरव और छवि ने बुरी तरह झगड़ा हो गया। वो दोनों ही पुरानी बातें याद कर रहे थे, जिसके बाद इस तरह की बहस होना तय था। आरव गुस्से में रूम से बाहर चला गया। अनजाने में ही सही उसने बहुत सालों बाद छवि को मॉम बोला था, जिसके बाद वो इमोशनल हो गई। तो वहीं आरव का दर्द देखकर अयान को बहुत बुरा लग रहा था। अयान की हर मुश्किल सिचुएशन में आरव ने उसे संभाला था और कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया, जबकि आरव खुद अकेला था। आरव नम आंखों से रूम से बाहर निकला तो उसे सामने आयु दिखाई दी। उस पर नजर पड़ते ही आरव ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और आयु के पास आकर कहा, हमारा काम हो गया है, चलो घर चलते हैं।
आयु ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बार मैं उनसे मिल लेती हूँ, अयान भी अकेला होगा ना। तो आरव ने आयु की बात बीच में काटते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, वो रेस्ट कर रही है, अयान भी इस वक्त उनके साथ बिजी है, तो हमें चलना चाहिए। आयु ने आरव की आंखों में देखा तो वो लाल थी, उसकी आवाज़ भी काफ़ी लो साउंड कर रही थी। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, तुम परेशान लग रहे हो, तुम दोनों का फिर से झगड़ा हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ मिसेस खुराना, मुझे बस घर जाना है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, आरव ने जवाब दिया और अपनी टाई को लूज करने लगा। वो क्लॉस्ट्रोफोबिक था, इसीलिए उसे इस वक्त सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आयु ने भी आगे जिद नहीं की, उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आई। गाड़ी के पास आते ही आरव ने कहा, तुम ड्राइव कर लोगी क्या? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आयु समझ गई थी कि जरूर कुछ हुआ है, लेकिन पूछने पर आरव उसे नहीं बताएगा, तो उसने कुछ पूछा भी नहीं और उसकी बात पर हामी भरते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। आयु भी आज मॉल में हुई फैज से अपनी मुलाकात के बारे में आरव को बताना चाहती थी, लेकिन वो पहले से ही परेशान था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। वहीं हॉस्पिटल में आरव के जाने के बाद छवि ने अयान से कहा, मुझे उसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, क्या तुम उसे वापस बुला सकते हो? मुझे उसे सॉरी कहना है और भी बातें करनी है। वो घर चले गए होंगे, मैं कल उन्हें बुला दूंगा, इस वक्त उनसे बात करना सही नहीं होगा, अयान ने शांति से जवाब दिया। वो भी आरव के पीछे जाना चाहता था, लेकिन छवि को छोड़कर नहीं जा सकता था। छवि ने आगे कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठी हुई बस एक दिशा में देख रही थी। तभी अचानक अयान ने पूछा, मॉम कभी आपसे इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? सब कुछ तो सही जा रहा था हमारी फैमिली में, फिर आपने डैड को क्यों छोड़ा? अयान का सवाल सुनने के बाद छवि ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, कई बार हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अनुराग का ज्यादातर टाइम बिजनेस में बीतने लगा था और मैं आरव को संभालने में बिजी थी, फिर अचानक तुम मेरी लाइफ में आ गए। तुम दोनों के आने के बाद ऐसे लगने लगा जैसे मैंने खुद को खो दिया है। तब मम्मी जी ने मुझे जॉब करने की सलाह दी ताकि मैं खुद को तलाश सकूं। मैं अनुराग के साथ काम नहीं करना चाहती थी, वरना वही बात हो जाती। हम दोनों के झगड़े वैसे भी काफ़ी बढ़ गए थे, घर में भी एक दूसरे के साथ टाइम भी बिताना मुश्किल था। अगर ऑफिस में भी साथ रहते तो वहाँ भी घुटन और तकलीफ ही मिलनी थी, इसीलिए मैंने कहीं और काम करने का सोचा। सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ में मैं जॉब करने गई थी, जहाँ के मालिक धीरज सिंघानिया से मैं क्लोज होने लगी। मुझे नहीं पता था वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है और उसके साथ मैं भी इन्वॉल्व हो गई। मुझे उस वक्त सच में किसी के प्यार की ज़रूरत थी, जो मुझे अनुराग के बजाय धीरज से मिला, बोलते हुए छवि की आंखों में आंसू आ गए। पूरी बात सुनने के बाद भी अयान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो छवि फिर से बोली, हाँ कुछ पल के लिए मैं सेल्फिश हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हें और आरव को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, तभी मैं तुम दोनों को साथ लेकर गई थी, लेकिन आरव अपने डैड के साथ बहुत अटैच था और उसने उन्हें कॉल करके हमारे बारे में बता दिया। अनुराग मेरे पास से आरव को लेकर चला गया और आरव को वापस पाने के चक्कर में मैं अनुराग से सब ठीक करने में लगी रही। उसे बस मुझसे अपनी फ़िज़िकल नीड्स पूरी करनी थी, बाकी और कुछ नहीं। आरव तब बच्चा था, तब वो नहीं समझ सकता था, लेकिन अब बड़े होने के बाद भी वो मुझे नहीं समझना चाहता। छवि लाचारी से अयान की तरफ देख रही थी। उसे लगा आरव ने तो उसे नहीं समझा, लेकिन अयान ज़रूर समझेगा। अचानक अयान ने जवाब में कहा, तब तो वो बच्चे थे, लेकिन अब तो नहीं है ना? उस वक्त आपने गलती की,
लेकिन अपनी उस एक गलती को छुपाने के लिए बार बार गलतियां करती रही। धीरज सिंघानिया अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था, तो आपको कोई जरूरत नहीं थी उनके साथ वहां इन्वॉल्व होने की। आपने भाई को जान से मारने की कोशिश की। आप दोनों के बीच हमेशा से बिजनेस राइवलरी रही है, लेकिन आपने आयु को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया, उसे ब्लैकमेल किया और रोहन चौहान के जरिए उसे अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा दिया। पुरानी गलतियों के लिए तो भले ही भाई और मैं आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन अब आपने जो किया उसके बाद चाहकर भी हम आपको माफ नहीं कर सकते। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए, मुझे आपके साथ रहने की आदत है, लेकिन भाई को नहीं। मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाती वो आपसे रोज मिलने आए। तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी? मुझे नहीं लगता। कहते हैं इंसान का आखिरी वक्त आता है तो तब उसे एहसास होने लगता है, शायद तभी मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, छवि ने जवाब दिया। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। अयान ने छवि की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे कुछ मेडिसिन दी। फिर इंजेक्शन लगाने के बाद उसने छवि से कहा, थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाएगी मॉम, हम आज की रात भले ही ना सो पाएं लेकिन आप सुकून से सो पाएंगी। प्लीज भाई जब यहाँ आए तो उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिएगा। छवि ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कहा, रायशा कहाँ है? मुझे उससे भी मिलना है। क्या उसे मेरे बारे में? बोलते हुए छवि रुक गई। तब अयान ने नामे सिर हिला दिया। अब तक उसने रायशा को छवि के बारे में नहीं बताया था। कुछ ही देर में छवि को नींद आ चुकी थी, तो वहीं अयान उसी वक्त आरव से मिलने के लिए खुराना मेंशन जाने लगा। वो जानता था इस वक्त आरव को किसी की जरूरत थी और वो आयु के सामने कभी सच नहीं बताएगा।